الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين. तो देखते हैं आज यहां से तफसीर। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हूद आयत नंबर 50-68। जैसे कि हम पहले नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ चुके हैं, और उसमें खास बात जो आपने देखी वो उनके बेटे के हवाले से थी, और बहुत ही इबरत अंगेज वाकया ये हमारे लिए, क्योंकि इंसान बहुत दफ़ा भरोसा करता है कि उसके इर्द गिर्द वाले अगर नेक हैं, ख़ास तौर पे अगर उसके वालिदैन या उसके कोई और प्यारे, मसलन आदमी कहता है कि मेरी बीवी तो नेक है, औरत कहती है मेरा शौहर तो नेक है, तो इंसान उसके ऊपर भरोसा करने लगता है और सोचता है कि अब मुझे मेरे किसी काम की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम भी अपने बेटे को नहीं बचा सके, तो क़यामत के दिन हम किसी के ऊपर भरोसा करके चले जाएं अगर, और ये सोचें कि अब मेरी तो जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई, कोई और ही कर रहा है मेरी जगह पे, मेरे वालदैन बड़े ही नेक होते थे, हमारे दादा बड़े नेक होते थे, हमारे फलां बहुत नेक होते थे, ठीक है वो नेक होते थे, लेकिन अब आपका काम क्या है। ये बहुत बड़ा एक सबक है हमारे लिए, और इसके अलावा भी बहुत सारे सबक हमने इसमें सीखे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि इन बातों को हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और इनको आगे भी पहुँचाएं। अब आगे जो किस्सा आ रहा है, आद और समूद का, जो आज हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो ये किस्सा आप गो के पहले पढ़ चुके हैं और दोबारा भी आएगा कुरान पाक में। इस किस्से को क्यों बताया गया, आद और समूद के किस्से को, वाई ओनली देम? असल में बात यह है कि ये वो बस्तियां थीं जो, जिसको कहते हैं जजीरा अरब में आती थी, और जजीरा अरब में ये सारे मुल्क थे, शाम है, उर्दन है, फलस्तीन है, यमन है, ये सब जगहें जो हैं वो जजीरा अरब में शामिल थीं, और यहीं पे ये बस्तियां तबाह हुई थी। इन बस्तियों के जो वाकयात थे वो सीना बसीना आगे तक पहुंचते रहे, और किसी ना किसी हद तक, क्योंकि बहुत इतनी डिटेल में नहीं, मगर किसी ना किसी हद तक मुशरिकीन मक्का जो फर्स्ट जो मुखातिब थे कुरान पाक के, उन तक भी ये वाकयात पहुंचे हुए थे। वो भी कहीं ना कहीं सुन गुन उनको भी थी कि आद एक हुआ करते थे, एक समूद की बस्तियां तो करीबी थी, उनसे तो कई काफले भी गुजरते थे, तो इनको वो जानते थे, इनसे वो फैमिलियर थे, तो खास तौर पे इनकी बात की गई। वरना ऐसे नहीं है कि कोई दुनिया में और कोई बस्ती तबाह ही नहीं हुई, यही सिर्फ तबाह हुई है, या इन्हीं के पास रसूल आया और इन्होंने नाफरमानी की, नहीं, और भी बहुत सी हैं। मगर कुरान पाक में इन्हीं पांच छह जो कौमें हैं इनका जिक्र आप देखेंगे बार बार आता है। तो आज आद की बात करते हैं। कौमें आद जो थी ये यमन की तरफ थी, और आप सूरह आकाफ भी पढ़ेंगे, और ये इनको आकाफ वाले भी कहते हैं क्योंकि ये आकाफ के इलाके में थे, और ये कौम बहुत ही ताकतवर कौम थी, बहुत लंबे चौड़े लोग थे, ऐसे लोग थे कि जिनको अपने आप के ऊपर बड़ा मान था, बड़ा फखर था कि हम जैसे तो कोई है ही नहीं। अल्लाह ताला ने आगे भी इनका जिक्र किया है, 30वें पारे में भी आप इनका जिक्र पढ़ते हैं। तो जिस्मानी तौर पे भी ताकतवर थे, माली तौर पे भी थे, कुव्वत तरक्की में भी थे, बड़ी बड़ी इन्होंने इरामादात अल इमाद जो आप आगे पढ़ेंगे 30वें पारे में, तो ऐसे इन्होंने बड़े बड़े इमारतें और मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए थे और बड़ी तरक्की थी इनकी। तो ये सिंबलाइज करती है ऐसी कौमों को जो कि दुनिया में बहुत पावरफुल, बहुत तरक्की याफ्ता हूं। तो अब आप उस जहन के साथ समझें कि समझे जैसे आज हम कहते हैं सुपर पावर्स, दुनिया में कुछ कौमों को सुपर पावर समझा जाता है, तो उस जमाने में एक सुपर पावर ये थी आद। बड़ा इनका डंका था, खुद को समझते भी बहुत बड़ी चीज थे। वह इला आदिन अखाहुम हूदा, और आद की तरफ उनके भाई हूद अलैह सलाम को भेजा। भाई का मतलब ये नहीं कि उनके कोई यानी ऐसे को दीन में उनके भाई थे, दीनी भाई थे, नहीं, बल्कि उनकी कौम में से ही एक फर्द को उनकी तरफ रसूल बना के भेजा। ये मतलब यानी उसी कौम से थे, आद में से ही थे, इसलिए भाई कहा गया। वाला या कौम अबदुल्लाह, उन्होंने भी कहा ए मेरी कौम। अब यहां पे भी देखें किनको वो खिताब कर रहे हैं, मेरी कौम कह के किन के साथ बात कर रहे हैं, काफिरों के साथ, मुशरिकों के साथ, बदअकीदा लोगों के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो बुतपरस्ती करते थे, ऐसे लोगों के साथ जो इंतहाई मुतकब्बिर थे, उनको भी क्या फरमा रहे हैं, या कौमी। ये हमें एक बहुत बड़ा दर्स देती है ये बात, कि जब आप तबलीग के मैदान में उतरते हैं ना, तो आपके अंदर इस कदर खैरख्वाही होनी चाहिए उनकी जिनको आप मुखातिब कर रहे हैं, जिनको आप दावत दे रहे हैं। अगर आप उनके साथ हमदर्दी नहीं रखते और खैरख्वाही के जज्बात नहीं रखते, तो फिर आप उनको दावत नहीं दे सकते। हमदर्दी किस बात की, उनके अमल से हमदर्दी नहीं करनी है कि ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, बल्कि हमदर्दी इस बात की कि हम इनको जहन्नुम की आग से बचा लें, हम इनको शिर्क से किसी तरह बाज कर लें, हम किसी तरह इनको इस रास्ते से हटा के सिराते मुस्तकीम पे लाने की कोशिश करें, इस चीज की हमदर्दी होनी चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ हमदर्दी उनके दीन से हमदर्दी हो जाती है, उनके दीन से हमदर्दी नहीं करनी है, ठीक है, बल्कि उनकी आखरत से कि ये भी बुरे अंजाम से बच जाए। अगर हमारे अंदर ये खैरख्वाही के जज्बात नहीं होते ना, हम तो अपनों को भी काटते हैं, हम अपनों से नहीं अगर खैरख्वाही के जज्बात रखते, हमदर्दी रखते, तो आप बताएं कि जिनका दीन हमारे साथ नहीं मिलता उनसे क्या करेंगे। आज हम सब इतने सेल्फिश हो गए हैं कि बस अपना अपना है, किसी की कोई परवाह नहीं है, कोई जाए जहन्नुम में जाए, जहां जहां मर्जी जाए, वो इसका बेड़ा गर्क हो जाए या कुछ भी हो जाए, उससे हम कोई सरोकार ज्यादा नहीं रखते, क्योंकि हमें अपनी बस अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली, अपने घर, बस इससे आगे हम निकलना नहीं चाहते। मगर पैगंबर देखें, उनकी तड़प देखें कि वो किस किस तरह से, आप देखेंगे कि किस किस तरह से लोगों को बता रहे हैं। और अगर किसी के अंदर ऐसी हमदर्दी है, तो उसके अंदर पैगंबरों वाली एक सिफत है, फिर बहुत प्यारी सिफत है ये। तो हमें पैगंबरों के अखलाक से भी सीखना होता है कि वो कैसे बात करते थे। वो ये नहीं कहते थे ओ देहरियो, ओ काफरो, ओ मुशरिको, तुम तो जहन्नुम में जाने वाले हो। आप किसी पैगंबर की तबलीग का ये तरीका नहीं देखते, तो हम भी फिर थू थू करके कैसे फिर तबलीग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक एटिकेट सीखा तबलीग का। लेकिन अब आप देखिएगा, मैं आपको एक बात की तरफ जरूर तवज्जो दिलाऊंगी आगे जाके, कि यहां पे या कौमी कहा है, मगर ये मतलब नहीं है कि वो उनके आगे बिछ जाएं कि मैं तो कुछ कहता ही नहीं, तुम लोग बिल्कुल ठीक हो, ये चीज नहीं है। फिर आगे उनसे जहां पे फर्म होना है आपने, वहां पे फर्म भी है, लेकिन अंदाज उनको पुकारने का कैसा है, उसमें नरमी है, उसमें शफकत है, उसमें उनकी खैरख्वाही और हमदर्दी के जज्बात है। अबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, मालकुम मिन इलाहिन गैरु, तुम्हारे लिए उसके सिवा कोई इलाह नहीं है, इन अंतुम इल्ला मुफ्तरून, नहीं तुम मगर झूठ गढ़ने वाले हो, यानी ये जो तुम काम कर रहे हो ना ये झूठ है, ये इफ्तरा परदाजी, झूठ क्या मतलब खुद ही बनाया हुआ। ये जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करने का काम है, यानी आप यहां पे आप देखें, स्टार्ट तो या कौमी से किया, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि तुम सच्चे ही हो, तुम भी अच्छे हो, हम भी अच्छे हैं, तुम भी सही कर रहे हो, नहीं ये नहीं है। देखिए ये बहुत जरूरी है कि जब हम दावत का पैगाम दें ना, तो हम कॉम्प्रोमाइज ना कर लें कि कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये बात अगर कहेंगे तो फिर कहीं ये ना हो कि ये उनको अच्छी ना लगे, कहीं ये ना हो कि ये वो फिर हमारी बात नहीं सुनेंगे, तो उनको भी अच्छे कहते जाओ साथ। ऐसे नहीं है, इबादत करो अल्लाह की, क्योंकि वो तुम्हारा इलाह है, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं। मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी हूं कि प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब इबादत करनी होती है। ये तो फिर भी कोई मान लेता है कि हाँ आसमान और जमीन अल्लाह ने ही पैदा की है, और वो लोग मान भी जाते थे, कुछ जब कुरान कहता है कि जब इनसे पूछते हैं कि आसमान और जमीन किसने पैदा किए, तो कहते हैं अल्लाह ने, तो फिर आगे प्रॉब्लम फिर किस बात का था? जो हम समझते हैं ना कि वो अल्लाह को नहीं मानते थे, ये बात गलत है, वो अल्लाह को मानते थे मगर उसके साथ शरीक मानते थे इबादत में, इबादत करते वक्त उसके साथ औरों को भी शरीक ठहरा लेते थे। और इबादत में मैंने आपको बताया था कि इबादत में कई काम आ जाते हैं, इबादत के जुजियात हैं, यानी इबादत के पार्ट्स हैं। इबादत किन किन चीजों में आप कहेंगे कि ये भी इबादत है ये भी इबादत है, किस चीज को आप कहेंगे? इताअत इबादत है, याद रखिए। जब इंसान किसी और की इताअत करने लगे अल्लाह की इताअत को छोड़ के, तो ये भी शिर्क हो जाता है, ये भी इबादत में शिर्क है। जैसे हदीस में आता है ना कि अल्लाह ताला की नाफरमानी में किसी की फरमाबरदारी नहीं कर सकते आप, किसी की इताअत नहीं कर सकते जहां पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। आप ये नहीं कह सकते मैं क्या करूं मेरे हस्बैंड ये कहते हैं, मैं क्या करूं मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं, चाहे अल्लाह का हुक्म टूट रहा हो लेकिन आपको ये फिक्र पड़ी हुई है कि पेरेंट्स क्या कहते हैं, या हस्बैंड क्या कहते हैं, या बच्चे क्या कहते हैं, या लोग क्या कहते हैं, तो किसी की भी फरमाबरदारी नहीं कर सकते जहां अल्लाह की नाफरमानी हो रही है। वैसे आप शौहर की माने जरूर माने, वालदैन की भी माने, बच्चों के भी आप नाज नखरे उठाते ही हैं, लेकिन एक हद सबको पता होनी चाहिए कि जहां पे अल्लाह ताला के हुक्म की बात आ जाएगी वहां पर ये मेरी बात नहीं मानेगी, ये सबको पता होना चाहिए। आपको कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं होना चाहिए जो मतलब तर निवाला बन जाए हर एक के लिए, यानी हर एक समझे कि जिस जो इसको कहूंगा वैसे ये कर लेगी, नहीं उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये हमारी सारी बातें मान लेती है लेकिन इस बात में हमें पता ये नहीं मानेंगे। लोगों को पता चल जाता है ना, बच्चों को भी वालदैन का पता होता है कि कहाँ पे ये मानते हैं और कहाँ पे इनकी बाउंड्रीज हैं, इनकी लिमिट्स हैं, यहाँ पे ये फर्म है ये नहीं मानेंगे हमारी बात। तो ऐसे क्यों नहीं लोग हमारे अंदर फर्मनेस देखते, क्योंकि हर जगह हम फिसल जाते हैं, हर जगह पे हम कॉम्प्रोमाइज पे आ जाते हैं, जहां अल्लाह ताला का हुक्म आता है वहां पे अल्लाह का हुक्म छोड़ के कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। फिर इसी तरह मोहब्बत में भी शेर क्या है कि मोहब्बत में भी इंसान अल्लाह से बढ़ के किसी और को महबूब बना ले तो वो भी एक शिर्क की चीज है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इन लोगों के बारे में फरमाया है जो कि अल्लाह ताला के सिवा अंदाद, जो दूसरे यानी शरीकों से शिर्क करते हैं, वमिन अन्नासी मन यत्तखिज़ु मिन दूनिही अंदाद हैं, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, वो उनसे मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, जबकि अल्लाह की मोहब्बत तो सबसे ऊपर होनी चाहिए। अल्लदीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले तो अल्लाह की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं। कभी अल्लाह की जात को भी ऐसे समझा कि अल्लाह की जात से भी मोहब्बत करनी है। बहुत से लोग अल्लाह ताला को मानते हैं लेकिन वो ये नहीं समझते कि अल्लाह की जात मोहब्बत के काबिल भी है। हाँ क्या मोहब्बत के काबिल है? बच्चे मोहब्बत के काबिल हैं, घर वाले मोहब्बत के काबिल हैं, पैसा मोहब्बत के काबिल है, स्टेटस मोहब्बत के काबिल है, चीजें मोहब्बत के काबिल हैं, उन सब चीजों को मोहब्बत देते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को भी मोहब्बत देते हैं हाँ, लेकिन अल्लाह ताला को मोहब्बत के काबिल नहीं समझते कि अल्लाह से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। जबकि सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने साफ तौर पर फरमा दी, ये सारी चीजों को एक तरफ रखा, और हम पढ़ चुके हैं ये आयत, 8 चीजें अल्लाह ताला की मोहब्बत से अगर ज्यादा हैं तुम्हारे दिल में तो फिर इंतजार करो, फिर इंतजार करो, फिर अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। और उनमें 5 करीबी रिश्ते हैं, और उसमें माल और आपकी और आपके बिजनेस और सब चीजें भी उसमें गिनवा दी गई। केवल पैसे की देवी की तुम पूजा करते हो, उसको देवी मानते हो और उसकी पूजा करते हो, और अल्लाह को पीछे किया हुआ, पैसे की मोहब्बत को ऊपर किया हुआ। पैसा आए तो खुश हो जाते हैं, पैसा चला जाए तो दुखी हो जाते। वतन की मोहब्बत है और चीजों की मोहब्बत है और इन रिश्तों की मोहब्बत, तो मोहब्बत भी अल्लाह की सबसे शदीद होनी चाहिए। जाहिर है जब सबसे शदीद मोहब्बत जिससे आपको होती है आप उसकी इतात भी करते हैं। इसी तरह इबादत का एक जुज, या इबादत कहें कि इबादत टोटली है ही क्या, दुआ, इसी से मांगना। हम किसी से पानी मांगे तो क्या ये इबादत हो जाए? नहीं, वो इबादत नहीं है। मगर गैब में किसी से मांगना कि जो नजर नहीं आ रहा उससे मांगना, कब्रों में या उनसे मांगना, फरिश्ते या उनसे मांगना, कोई और जिन्नात या और शयातीन या और कोई चीजें हैं जिनसे मांगना, ये सब इबादत है। इसका मतलब उसी की इंसान इबादत कर रहा है जिसे वो मांग रहा है गैब में, क्योंकि वो इस तरह उसको समझता है। इसी तरह सजदा करना, सजदा करना सिर्फ अल्लाह को जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सजदा किसी को जायज होता तो मैं औरत को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन किसी को जायज है ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को नहीं सजदा कराया, आपसे बढ़ के और कौन हो सकता है? फिर इसका मतलब ये पेशानी झुके तो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकनी चाहिए और किसी के आगे नहीं। यहां तक कि झुक के भी आप किसी के सामने खड़े ना हो, ये भी एक रुकू की पोजीशन भी एक सजदा ही है। इसी तरह इखलास, ये भी इबादत का जुज्व है। इखलास कि सिर्फ खालिसतन अल्लाह के लिए, और आप आगे देख लेंगे ये हूद अलैहिस्सलाम की भी दावत के अंदर इखलास कितना, कि रयाकारी कोई दिखावा ये भी शिर्क है। नमाज में दिखावा, रोजे में दिखावा, किसी भी अमल में दिखावा। इसी तरह नजरों नियाज मांगना अल्लाह के सिवा किसी और के नाम की। देखिए एक वाक्य आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी जन्नत में चला गया और एक आदमी जहन्नुम में चला गया सिर्फ एक मक्खी की वजह से। साहबा ने पूछा वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दोनों एक बस्ती से गुजरे जहां के रहने वाले बुत परस्त थे और वो वहां किसी को गुजरने नहीं देते थे। जब तक उनके बुत के नाम पे कोई चढ़ावा ना चढ़ा दे। तो एक आदमी जो वहां से गुजरा तो उसने उन्होंने कहा हमारे बुत के नाम पे चढ़ावा चढ़ाओ। उसने कहा कि मैं तो नहीं चढ़ाता। उन्होंने कहा कोई चीज पर चढ़ा दो, कुछ भी चढ़ा दो, मामूली सी चीज भी चढ़ा दो, लेकिन तुम्हें चढ़ानी पड़ेगी। उसने कहा कि मैं तो अल्लाह के सिवा किसी के नाम पे भी नहीं कुछ चढ़ाता। इस पे उन्होंने उसको मार दिया, खत्म कर दिया, और वो इंसान जन्नत में चला गया। दूसरा शख्स जब गुजरा तो उन्होंने उसको भी यही कहा कि तुम हमारे बुत के नाम पे कोई ना कोई नजर नियाज दो। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है तब भी चाहे एक मक्खी क्यों ना हो। तो उसने मक्खी मारी और उसके बुत के नाम पे चढ़ा दी। बस्ती वालों ने उसको जाने दिया। ये इंसान जहन्नमी हो गया। क्यों? इसलिए कि इसने गैर अल्लाह के नाम के ऊपर नजर नियाज की है। तो ये हमें बाज दफा समझ में नहीं आता कि कितनी जगह पे शिर्क हो जाता है, कितनी जगह पे इबादत के अंदर दूसरों को शामिल कर लिया जाता है। और मटेरियलिज्म भी आज बहुत बड़ा शिर्क है कि इंसान अल्लाह ताला को तो बड़ा ना माने और मटेरियल को बड़ा माने। मटेरियल इज इनडिस्ट्रक्टिबल कहते हैं, मटेरियल हो तो फिर हम अपने आप को अच्छा समझते, और मटेरियल नहीं हो तो हम अपने आप को लूजर समझते। तो मटेरियल भी आज का भूत है। तो उन्होंने कहा हूत अलैहिस्सलाम ने कि तुम ये सारा कुछ क्या है, झूठ है, कुछ भी नहीं है ये जो तुमने बुत बनाए। या कौमी ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ मेरी कौम मैं तुमसे कोई मांगता थोड़ी हूं कुछ, इन अजरिया इल्ला अलल्लज़ी फतरनी। ये है वो इखलास कि किसी के लिए भी कोई काम नहीं, मेरा काम ना सिर्फ अल्लाह के लिए है कि मैं उससे अपना अजर लूंगा, मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। यानी एक दाई दीन का इखलास भी इससे पता चलता है, इन अपनी कौम के लिए, और ये भी कि वो अल्लाह ताला के लिए अपने अमल को खालिस रखते थे कि किसी से मुझे ना कोई अजर में सब चीजें ही आ जाती, ना तुमसे कोई तारीफें चाहिए, ना तुमसे कोई ओहदे चाहिए, ना तुमसे कोई पैसा चाहिए। देखिए हम मुशरिकी ने मक्का ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑफर की थी कि आप जिस मर्जी औरत के ऊपर चाहे हाथ रखें, हम उससे आपने शादी करनी उसे शादी करा दें, आप पैसा चाहते हैं हम पैसा आपके ऊपर लुटा देते हैं, कोई खजाना चाहते हैं लुटा देते हैं, लेकिन आप ये काम छोड़ दें। लेकिन यही फर्क होता है एक पैगंबर में और एक जादूगर और शोबदेबाजों में, कि पैगंबर सिर्फ अल्लाह के लिए कोई काम कर रहा होता है, उसको लोगों से कुछ नहीं चाहिए। जबकि आप जादूगरों को देखते हैं वो कैसे लोगों से ही फिर मांगते हैं ना कुछ, उनको कोई ना कोई उम्मीद होती कि हमें यहां से मिलेगा। इवन जो फिरौन के पास जादूगर आए थे उन्होंने भी कहा था हमें क्या मिलेगा इसके बाद। तो बाज दफा ये इंसान सोचता है ना कि नबी भी मौजजा दिखाता है, जादूगर अपना शोभदा दिखाता है, तो कैसे पता चले कि नबी और जादूगर में फर्क करना हो तो कैसे पता चलेगा। ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। वैसे तो नबी की अपनी जिंदगी इस बात का सबूत होती है, आगे इस पे भी बात आएगी। तो ला अस्अलकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई किसी किस्म का इस काम पे अजर नहीं मांगता, और यही एक दाई का तरीका होना चाहिए। मेरा अजर उसके पास ही है जिसने मुझे पैदा किया, वो मुझे देगा। तो हम अपने हर अमल में इस तरह का इखलास लेकर आए, हर नेकी में, हर नेकी में जब नेकी करने लगे तो किसी की तरफ ना देखें कि मुझे यहां से क्या मिलेगा, कि सारी उम्मीद फिर सिर्फ अल्लाह के लिए की तरफ होनी चाहिए कि वो ही मुझे देगा, वहीं से मुझे मिलना। फरमाते हैं अफला ताकिलून, क्या तुम्हें कोई अकल नहीं आती कि मैं क्यों अपने आप को हलकान कर रहा हूं, मैं क्यों अपने आप को खपा रहा हूं तुम्हारे पीछे, क्यों तुम्हें इतना इस रास्ते से हटा के और दूसरे रास्ते की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं तुम, और मुझे कुछ मिलना भी नहीं है इस पे। इंसान यही सोचता है ना कि पता नहीं क्या कोई मफाद हो, पता नहीं किस वजह से हमें। देखिए दुनिया में ये जो जितनी भी सेलिंग होती है, जितने लोग अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, उनका पीछे कोई मफाद होता है ना, कोई फायदा उनको मिलना होता है, तो वो बड़ा आपको कन्विंस करते हैं कि नहीं जी आप ये खरीद लें। आप इसी तरह सोचें, फलसफे जो भी अपने डालना चाहता है उनके भी पीछे को गर्ज होती है, लेकिन पैगंबर बेलॉस होता है, बेलॉस, बिल्कुल वालदेन की तरह। जैसे वालदेन होते हैं ना अपने बच्चों को कहते हैं, समझाते हैं, बेटा ये नहीं करो, ये नहीं करो, हमें हमने तुमसे कुछ लेना थोड़ी है। और वाकई उनको उस बच्चे से कोई लालच नहीं होता जिसकी वजह से उसको गलत रास्ते से रोक रहे होते। तो लोग सोचते हैं कि ये पता नहीं हमें बता रहा है तो पता नहीं इसका क्या मफाद होगा, या इसको हमसे कुछ चाहिए नहीं, वो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ताकि लोग सोचे तो सही कि फिर ये क्यों हमें बुला रहा है। वया कौम इस्तग़फिरू रब्बकुम, ऐ मेरी कौम इस्तग़फार करो अपने रब से, सुम्म तूबू इलैही, फिर तौबा करो उसकी तरफ। इस्तग़फार और तौबा वैसे तो मुतरादिफात हैं, यानी एक की जगह दूसरा आ जाए तो उसमें ए वो ही माना होता है, इस्तग़फार में तौबा का भी माना है, तौबा में इस्तग़फार का भी माना है। लेकिन जब ये एक साथ आ जाए तो अब इनमें क्या डिफरेंस है, इस्तग़फार भी करने को तौबा भी, हम तो कहते हैं वो एक ही चीज है, तो कोई ना कोई फर्क होगा जो दोनों अलग अलग आए गए। तो इस्तग़फार कहते हैं पिछले गुनाहों से माफी मांगना, क्या, और तौबा कहते हैं आइंदा के लिए उस गुनाह को ना करना, क्या। इसी तरह इस्तग़फार कहते हैं जुबान से माफी का इकरार करना और तौबा कहते हैं अमल में भी पलट आना। ठीक है, वैसे मैंने आपको बताया जब आप इस्तगफार अकेला लफ्ज आएगा तो उसके अंदर तौबा शामिल है, लेकिन अब अलग अलग आए इसलिए आपको बता रही हूं। अब आइंदा के लिए ये नहीं समझ लेना कि कहीं इस्तगफार करने का आए तो आप कहेंगे बस मुंह से ही बोलते रहने का नाम इस्तगफार है, तो अमल बेशक हम ना करें पलटने का। तो यहां पे कहा गया बख्शिश भी मांगो अपने रब से, माजी के गुनाहों पे माफी भी मांगो, बोल के मांगो, कहो अल्लाह से कि अल्लाह ताला हमसे गलती हो गई, सुम्मा तूबू इलैही, फिर पलटो भी उसकी तरफ। ये बहुत जरूरी है कि इंसान सिर्फ जुबान से ये ना कहे कि अल्लाह मैं माफी चाहता हूँ, बल्कि अपने गुनाहों का इकरार करे अल्लाह के सामने और उसके बाद उस गुनाह को छोड़ भी दे, तौबा भी करे। लेकिन अक्सर आपने देखा है कि तौबा करना बड़ा ही इंसान को मुश्किल लगता है, बल्कि कबाज लोगों को तो माफी मांगना भी बड़ा मुश्किल लगता है, इस्तगफार करना भी बड़ा मुश्किल लगता है, और बहुत सारे बहाने जहन के अंदर आते रहते हैं कि मसलन है शैतान इंसान को जब वो गुनाह करता है तो उसको मतलब ऐसी बातें सुझा देता है, ऐसी चीजें समझा देता है कि वो तौबा करने से बचता ही रहता है, टालता ही रहता है उसको। और कोई उसको कह भी दे, किसी कोई बंदा कह दे, अव्वल तो लोग कहते ही नहीं है इसलिए कि हर एक सोचता है कि मैं क्यों अपनी बेइज्जती कराऊं, किसी को गलत काम करते हुए हम देख लेते हैं, हम कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में, हमने कुछ कहा तो फिर हमारे ऊपर कोई बरसेगा, हमारे ताल्लुकात खराब होंगे, तो चलो करने दो जो करता है, हमें क्या। आजकल हर एक का अपना अपना है ना, पैगंबरों ने ये नहीं कहा हमें क्या, उन्होंने लोगों को बताया। अच्छा, अब अगर कोई गुनाह का किसी को बता ही देता है कि ये सही चीज नहीं है, ये गुनाह है, तो दूसरा जो है बजाय इसके कि तौबा इस्तगफार करे, वो उसके ऊपर जस्टिफिकेशंस देने लगता है और बातें कहने लगता है कि नहीं जी फलां भी करते हैं और फलां भी करते हैं, और फिर वो उसी को निशाना बनाने लगता है, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, लो तुम पता है 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, अब बड़े बन गए तुम मुत्तकी, पहले पता है हमें तुम्हारा क्या थे, अब हमें समझाने आ गए। तो ये बड़ा ही एक मुश्किल काम होता है दूसरे को तौबा इस्तगफार की तरफ कायल करना, बल्कि अगर किसी को कह दिया जाए, कोई मुश्किल में हो उसको कह दिया जाए कि इस्तगफार करें, तो वो कहता है क्यों, मैं इतना गुनाहगार हूं कि मैं इस्तगफार करूं, अल्लाह ताला माफ करे। यानी हम अपने आप को गुनाहगार भी नहीं समझते, कहते हाँ बस थोड़े बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन बहुत तो नहीं है, हमारे से तो ज्यादा हैं कई लोग। तो ये शैतान ऐसी मीठी गोलियां देता है कि इंसान को तौबा की तरफ आने ही नहीं देता, उसके गुनाहों को हल्का करके दिखाता है, मुजयन करके दिखाता है, कुछ इतना छोटा करके दिखाता है कि इंसान को लगता है तो कुछ है ही नहीं, मेरे गुनाह कौन से हैं। वैसे हम मुंह से चाहे बोलते रहे हम बड़े गुनाहगार हैं बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन वाकई दिल से हम अपने आप को कोई ऐसा गुनाहगार नहीं समझते। जहां अपने गुनाहों की तौबा का मामला आता है तो हमारे सामने हमारी नेकियां खड़ी हो जाती हैं, नहीं, मैं तो ये भी नेकी करती हूँ। और कौन सी चीज है जो हमें तौबा से रोकती है? अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको टाल रहे होते हैं, ये कह कह के खुद को तसल्लियां देते हैं, बस ये मेरा फलां काम हो जाए ना फिर बस मैंने तौबा कर लूंगी, बस शादी हो जाए फिर तौबा कर लूंगी, बस बच्चे बड़े हो जाए फिर मैं इस काम से तौबा कर लूंगी, बस बच्चों की जरा पढ़ाई मुकम्मल हो जाए फिर मैं तौबा कर लूंगी, ये बीमारी है ये चली जाए फिर मैं तौबा कर लूंगी। मतलब इतनी हमने अपने आप को तावीलें देते हैं, जबकि हमें ये नहीं पता कि जिंदगी का सफर किस मोड़ पे खत्म हो जाए, चलती हुई हमारी गाड़ी कब रुक जाए हमें नहीं पता, फिर हम उस अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे? कभी हमारे सामने कोई चीज रुकावट बन जाती है, कभी बच्चे, कभी अपनी जवानी, कभी लोगों की बातें, कभी अपना काम कारोबार, कभी अपनी औलाद, कभी एक चीज, कभी दूसरी चीज, हर एक के लिए कोई ना कोई कमजोरी है जो उसकी तौबा के रास्ते में रुकावट बन जाती है। हालांकि हम ये नहीं सोचते कि ये सब चीजें हमारी आंखें बंद होते ही बिल्कुल बेवकूफ हो जाएंगी, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो दुनिया के दूसरे लोग हैं, चाहे वो हमारे अपने बच्चे ही क्यों ना हो, सब हमें छोड़ के उस कब्र में और चले जाएंगे, और हम वैसे इस तौबा के इंतजार में ही आगे आगे टालते जा रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं कि वो वक्त आ जाए जब आंखें बंद हो जाए, जब दिल की धड़कनें खत्म हो जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे, बेहोशियों के दौरे पड़ने लगे और रिस्क जितना हमारे नसीब में है वो पूरा हो जाए, फिर तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा, फरिश्ते आमालनामा बंद कर देंगे। तो फिर हम किस चीज का इंतजार करते हैं? हम क्यों नहीं तौबा करते? हम क्यों नहीं पलटते? इस्तिगफार की तस्बीहां भी करके नहीं पलटते? कितनी दफा लोगों ने दुआए करीमा, ये आयते करीमा जो है ये 1,25,00,000 दफा पढ़ी होगी, कहीं जाके पढ़ी होगी, लेकिन उसके बाद जिंदगी कैसी है? कोई एक चीज का भी फर्क आया? सोच में भी फर्क आया नहीं? इसलिए कि वो झूठों की तौबा है, वो कोई तौबा ही नहीं है। मोमिन का तो ये काम है कि वो जब किसी को गुनाह उससे हो जाता है ना, तो उसको ऐसे लगता है जैसे पहाड़ है मेरे ऊपर, ये पहाड़ है। और मुनाफिक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको ऐसे लगता है जैसे नाक पे बैठी हुई मक्खी है जिसको ऐसे उड़ा दिया, कुछ कोई बात ही नहीं है। तो क्योंकि शैतान नहीं एहसास होने देता ना कि कोई गलत काम है, उसके लिए कुछ भी मसला नहीं है, रोज रोजाना का काम है, जब करते रहते हैं तो वो हमारे रोज का काम बन जाता है, फिर हम इसको ये अहमियत भी नहीं देते। मसलन झूठ बोलना, वो रोज का काम बन चुका, जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे फौरन से झूठ बोल दिया। इस तरह के बेशुमार काम है जो कि हमें अब ये शऊर भी खत्म हो गया है कि ये मैं गुनाह कर रही हूं। तो इंसान देखो इस आरजी जिंदगी में, 4 दिन की जिंदगी में कैसे प्लानिंग करता है, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, और ये नहीं उसको याद रहता कि ये ना हो कि मैं तौबा के बगैर इस दुनिया से चला गया तो क्या होगा मेरा, मैं अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिनसे पहले जिन चीजों को फरमाया कि इस उनको गनीमत जानो, तो जिंदगी को गनीमत जानो मौत से पहले, कि आपके पास टाइम है। फरमाया ना कि जब तुम सुबह कर लो, जब तुम शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करो, सुबह करो तो शाम का इंतजार ना करो। यानी इतना अनप्रिडिक्टेबल बताया है जिंदगी को कि शाम है ना तो ये ना कहना कि अच्छा सुबह वो कर लूंगी, सुबह तौबा कर लूंगी, सुबह एक नहीं, कोई पता सुबह आए ही नहीं, सुबह है तो शाम का इंतजार ना करो। अपनी सेहत के जमाने में अपनी बीमारी के लिए सामान तैयार कर लो और अपनी जिंदगी में अपनी मौत के लिए, ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत। और यकीन करें जब इंसान ना गुनाह करता जाता ना मुसलसल, और उस पर शर्मिंदा भी नहीं होता, तौबा भी नहीं करता, तो शैतान उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे हावी हो जाता है। उतनी आपने हदीस सुनी होगी कि उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, ब्लैक डॉट लग जाता है, फिर गुनाह करता है, फिर और लग जाता है, फिर गुनाह करता है, तौबा नहीं करता, फिर और लग जाता है, हत्ता कि उसका दिल पूरा ही स्याह हो जाता है, फिर तो शैतान पूरा गालिब हो जाता है। तो जब फिर उस इंसान को मौत का भी वक्त आता है और लोग कहते हैं कलमा पढ़ो, तो वही जो गुनाह है उसकी सोचों पे हावी रहते हैं, उस वक्त भी फिर वो तौबा नहीं कर सकता, उस जुबान पे उसके कलमा नहीं जारी होता। ये गुनाहों का वबाल है, ये इनकी भी नहुसत होती है। मनहूस चीजों से हम वैसे तो बहुत बचना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहुसत रखते हैं, ये पता है। और हमें बाज गुनाह तो हमें इतने महबूब होते हैं कि हमें लगता है कि हाय अगर हमने इनको छोड़ दिया तो हमारी जिंदगी सारी अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगी, हमारी जिंदगी की इंजॉयमेंट ही खत्म हो जाएगी, कितनी बोर जिंदगी होगी हमारी, कितनी बदमजा होगी, कितनी रूखी सूखी होगी। तो हम उस वजह से हम गुनाहों को छोड़ते ही नहीं है सारी जिंदगी। अल्लाह अकबर। तो ये हम सबको अपने अपने गुनाहों को देखना है, और देखना है कि कैसे शैतान अगर हमें हीले सुझा रहा है, जस्टिफिकेशंस दे रहा है, या टाल मटोल हमसे करवा रहा है, तो ये उसकी एक चाल है कि वो टाल टलवाता जाए टलवाता जाए कि बस हाँ आज कर लूंगी, बस कल कर लूंगी, बस ये हो जाए कर लूंगी। तो ये इस तरह वक्त गुजरता चला जाएगा, इंसान कहता है मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, अभी से मैं शुरू कर दूंगी, लो अभी से मैं तौबा कर लूं, अभी मेरी उम्र क्या है। हालांकि कितने हम लोगों को देखते हैं, फलां का एक्सीडेंट हुआ चला गया, फलां को हार्ट अटैक हुआ अचानक चला गया, फलां के साथ ये हुआ। हम इतने वाकयात सुनते हैं फिर भी हम कल पे टाले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। तो गुनाहों का जो सबसे पहले दिल में एहसास होना चाहिए कि ये गुनाह है, अक्सर तो इस्तगफार को छोड़ ही दे, शैतान इतना उनको ब्यूटिफाई कर देता है ना कि वो गुनाह लगता ही नहीं, तो ये एहसास भी खत्म हो जाता है। लिहाजा सबसे पहले एहसास अपने अंदर पैदा करना, उसके बाद उस गुनाह की बुराई अपने दिल के अंदर पैदा होनी चाहिए कि ये बुरा है, उसके बाद उसके ऊपर इस्तगफार और फिर उसको छोड़ना और अल्लाह से वादा करना कि अब नहीं करूंगी। देखिए जो इंसान मोमिन होता है ना, उसके अंदर ये बड़ा ही एहसास होता है कि इस जिंदगी का तो कोई पता नहीं है, का पता नहीं कब मौत आ जाए, शायद पता नहीं अभी आ जाए, इसी वक्त आ जाए, वो अपनी मौत को सामने देखता है। इस वजह से ना वो फिर तौबा इस्तिगफार करता रहता है, वो टालता ही नहीं है। अब सरासर हम देखें दिन में 100 दफा तौबा इस्तिगफार किया करते थे, उनको हालांकि क्या जरूरत थी, तो वो फिर आगे टालता नहीं है, फिर उसकी जिंदगी बड़ी डिफरेंट हो जाती है, फिर वो अपने हर काम में अल्लाह को याद करके सोच के कि अल्लाह ताला इस काम से नाराज तो ना हो जाएगा, फिर करता है वो, फिर अपने वक्त को जाया नहीं करता, उल्टे सीधे जंबेलों में अपने आप को डाले नहीं रखता, बेकार चीजों में, बेकार के फजूल कामों में जिनका सिर्फ 2-3 घंटे का काम होगा और उसके बाद कुछ नहीं है, उसमें नहीं अपना वक्त जाया करता। कहता है, मेरे पास पता नहीं कितना वक्त रह गया, क्या पता मौत मेरे सर पे खड़ी हो, मेरे पास कुछ है नहीं। तो उसकी जिंदगी ऐसे टाल मटोल वाली नहीं होती, लिहाजा हमें अल्लाह ताला से तौबा करनी है और जल्दी करनी है, और अपने गुनाहों को चेक करना है किधर किधर गुनाह है, किधर किधर क्या कर रही हूँ, जुबान के गुनाह क्या हैं, अमल के गुनाह क्या हैं, मेरे मामलात के गुनाह क्या हैं, लोगों के साथ किस किस जगह पे हैं जहां पे मुझे अपने आप को फिक्स करना है। हाँ फिर से हो जाए वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अभी तो तौबा करें। तौबा के कई कलिमात हमें सुन्नतों से मिलती हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम वअतूबु इलैह, कितना प्यारा कलिमा, जिसने पढ़ लिया तो फिर उसकी तो यानी अगर मैदाने जंग से भी भागा हो तो उसके ऊपर भी उसको उसकी माफी हो जाती है। तो हमेशा इस्तग़फार को अपना तरीका बना लें, जैसे उठते बैठते अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ऐसे कर लिया, सुम्मा तूबू इलैह युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। फिर देखें उनको सिर्फ ये नहीं कहा कि देखो अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम जहन्नुम में चले जाओगे, ये उनको ना दुनिया की भी आसाइशों का बताया कि देखो, क्योंकि एक इंसान होता है जो भटका हुआ है ना, उसको दुनिया के फायदों का बड़ा लालच होता है, तो ये फायदे जो आगे आ रहे हैं ये दुनियावी फायदे हैं, आखरत में तो तौबा करने पे इंसान को अल्लाह ताला की रजा भी मिलेगी, इस्तगफार करने ये इतना बड़ा अमल है कि जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चाहता है कि उसका कोई वो अपना अमालनामा देख के कयामत के दिन खुश हो जाए, उसको चाहिए कि बहुत ज्यादा तौबा इस्तगफार करे, तो तौबा से गुनाह मिट जाएंगे, वहां पे सजा से इंसान निजात पा सकता है। उनको ये बातें नहीं बताई, उनको इसलिए दुनिया के फवायद बताए ताकि वो जो एक जो दुनिया में पढ़े हुए लोग हैं वो इस वजह से ही इस तरफ आ जाएं। ठीक है आखरत के तो फवायद हैं ही हैं, लेकिन दुनिया में भी तुम्हें फायदा मिलेगा, और हम भी ज्यादातर दुनिया के फायदों को देख लेते हैं फौरन उसके ऊपर फिसल जाते हैं। और हमें कोई कहे कि ये आप ये काम करेंगे तो आपको इनाम आपको $1,000 मिलेगा, आपको ये मिलेगा, ये आपके लिए प्राइजेस रखे हुए हैं, इन प्राइजेस में से मिलेंगे, तो आप फौरन उस काम के लिए भागते हैं। यहाँ पे कहा गया देखो तुम अगर तौबा कर लोगे ना, अल्लाह ताला आसमान को तुम्हारे लिए बरसा देगा। और आसमान का बरसना क्या होता है? अल्लाह की रहमत है ये। इससे जब जिस जगह पे बारिशें पड़ती हैं वहां पे बड़े फवायद होते हैं। वहां पे बहुत सब्जा होता है, ग्रीनरी होती है, फसलें उगती हैं, मौसम भी बदलता है, और बहुत सारे फवायद। इंसान को पानी भी मुयस्सर होता है, उस जगह की आबो हवा चेंज हो जाती है। तो जो आसमान है, अल्लाह ताला तौबा की वजह से आसमान को बरसाएगा। और आपको पता है, जहां पे लोग गुनाहों में पड़ जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानियों में पड़ जाते हैं, तो वहां पे अल्लाह ताला बारिश को बंद कर देता है। ये भी इंसानों की नाफरमानियों का नतीजा होता है कि बारिश बंद हो जाती है। ये बारिश अल्लाह की रहमत है। तो एक हदीस में आता है, अगर ये बेजुबान जानवर वगैरह ना हो तो अल्लाह ताला बारिश रोके रखे। पता नहीं किसी कमजोरों की वजह से अल्लाह ताला बारिश बरसा देता है। वह यजिदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी कुव्वत पे कुव्वत का इजाफा कर देगा। यानी पहले भी तुम्हारे पास कुव्वत है, पहले भी वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते थे, तो और तुम्हें कुव्वत अता फरमा देगा। तो लोग चाहते हैं, कौमें चाहती हैं कि वो पावरफुल हो, वो जिस्मानी कुव्वत भी मिले, मादी कुव्वत भी मिले, उनको दुनिया की भी तरक्कियां मिले, तो वो तरक्कियां भी तुम्हें और मिलेंगी। वला ततवल्लो मुजरिमीन, और ना तुम मुंह फेरो मुजरिम बन के, अल्लाह के मुजरिम ना बनो। और मुजरिम कौन है यहाँ पे? जो अपने गुनाहों को नहीं मानते, तौबा नहीं करते, तौबा से भागते हैं। तौबा कर लो, छोड़ दो ये सारे काम जो कर रहे हो, ठीक है। कालू याहूदू, उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया? एहूद मा जीतना भी बई ना तेवा मा नाहनु भी तारे की आदि हतिनान कौली का, तू तो हमारे पास कोई दलील ही नहीं लेकर आया। हालांकि हूद अलैहि सलाम के पास दलील तो थी, मगर उनको दलील नहीं नजर आती थी। सबसे बड़ी दलील क्या है अंबिया की? मैंने आपको बताया था पहले भी कि अंबिया की अपनी जिंदगियां जो होती है ना, वो सबसे बड़ी दलील होती है उनके सच्चा होने की। उनकी जिंदगियों में जो सच्चाई, ईमानदारी, दयानत, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनके मामलात, उनकी इबादात, ये सब मुंह बोलता सबूत होती हैं कि वो अल्लाह के चुने में हैं। वो मिसाली किरदार के मालिक होते हैं अपनी कौमों में। ऐसे नहीं होता कि वो जब पैगंबर बने तो उनकी लाइफ चेंज हो गई, वो चेंज से पहले तो वो ऐसे थे ऐसे थे, ऐसे नहीं होता। शुरू से उनका एक किरदार और अखलाक होता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफिर चाहे ना माने रसूल, लेकिन वो ये जरूर मानते थे कि आप सादिक और अमीन हैं, और नबुवत से पहले से मानते थे। तो इसी वजह से तो आप देखें, हिजरत का वक्त भी आ गया तो उस वक्त भी लोगों की अमानतें आपके पास थी। अगर ना मानते होते तो मानते ना वापिस ले लेते। तो उनको पता था कि ये इनकी बात हम माने या ना माने, लेकिन हैं ये सादे कमी। तो पैगंबर जो होते हैं उनके बारे में कोई कौम ये नहीं कह सकती कि ये इनका किरदार ऐसा है, या उसके ऊपर को भी कोई उंगली नहीं उठा सकता। तो वो बड़ी दलील होती है उनके सच्चा होने की। तो कहते हैं, आप तो हमारे पास कोई दलील ही नहीं। वमा नहनु बितारिकी आलिहतिना, हम तो अपने माबूदों को थोड़ी छोड़ देंगे आपके कहने पर। आपने कह दिया तो हमने छोड़ दिया। मामा नानू ला कभी मुमिनी ना, हम तो नहीं आपकी बात मानने वाले। इन नकुलू, नहीं हम कहते, इल्ला तेरा का बादु आली हतीना भी सू। ये एक बड़ा मसला है जो लोगों को दरपेश रहता है। उन्होंने भी कहा कि हम तो नहीं कहते, मगर ये बात सिर्फ कहते हैं कि आपका जो मामला है वो हमारे माबूदों ने, बाज माबूदों ने बुराई का किया। यानी आपके साथ हमारे बाज माबूदों ने बुराई का मामला किया है, आपके साथ जो ये अब आप नाउज़ बिल्ला कोई बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, जो पता नहीं आपको क्या हो गया है, पता नहीं आपका जो यानी नाउज़ बिल्ला सर घूम गया है, मत मारी गई है, वो इस वजह से है कि हमारे जो माबूद जिनको आपने गुस्ताखी की है ना, इन्होंने आपको इस तरह से कर दिया कि आप जुनूनी बातें कर रहे हैं, आप बेसमझी की बातें कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आज तक बाज दफा जब लोगों को मना किया जाता है ना कि ऐसे मत करें, ऐसे मत आप कब्रों पे जाके इस तरह से उनको पुकारें, ये सही नहीं है, ये शिर्क हो जाता है। तो वो कहते हैं हाय हाय, अब आपको क्या पता, ये तो आपने इतनी बुरी बात कह दी है, अब तो तुम्हारा कुछ नहीं बचना, अब तो तुम्हारा तू हलाक हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, तेरा तो सारा कारोबार खत्म हो जाना, अब तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो ऐसे कहते हैं अब इनकी बद्दुआ लग जानी है तुझे, इस तरह से डराते हैं। देखो अभी कहते हैं हाँ, तुझे ये मसला इसीलिए आया ना कि तुमने ये बातें शुरू कर दी ना, कि इनको नहीं तुम मानती ना। मानने का मतलब क्या होता है? अब बुजुर्गों को कहते हैं ये बुजुर्गों को नहीं मानते। व्हाट डज दैट मीन, बुजुर्गों को नहीं मानते? वो अल्लाह के प्यारे बंदे थे, उन्होंने दीन का काम किया, वो दुनिया से चले गए, ये ना मानना है? ये तो सब मानते हैं। वो पता है किस बात को कहते हैं ये नहीं मानते, मतलब है कि इनसे मुरादें नहीं मानते, इनसे मन्नतें नहीं मानते, इनके पास जाके दुआएं नहीं करते। तो आगे से कहते हैं ये बुजुर्गों को नहीं मानते। तो ये क्या, यानी उनसे मांगना ही उनको मानना है? अगर उनसे मांगना उनको मानना है तो ऐसा मानना हम नहीं करते वाकई, कि हम उनसे मांगे अल्लाह को छोड़ के। तो उन्होंने कहा कि ये तुम जिन्हें जो ये कह दिया ना कि सारे इनको छोड़ दो और एक अल्लाह को मानो, तो अब ये नाराज हो गए। देखा अब तुम्हें कैसा कर दिया कि तुम ऐसी बातें करने लगे हो। तो अब पैगंबर का क्या जवाब है? कौल है इन्नी उशहिदुल्लाह वह शहदु अन्नी बरी मिम्मा तुशरिकून, बेशक मैं तो गवाह बनाता हूं अल्लाह को और तुम भी गवाह रहना कि मैं बरी उजिम्मा हूं उससे जो तुम शरीक ठहराते हो। उन्होंने ये नहीं कहा हाय अच्छा भाई पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा, आई वैसे मुझे इतना भी नहीं कहना चाहिए था, क्या पता मुझे अब कुछ हो ही ना जाए, भाई मैंने इनको क्यों नाराज कर दिया। नहीं, पैगंबर आगे से कहते हैं बरमला, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं, अलल ऐलान कहते हैं। देखा अब आपने, ये मैं बात आपको कह रही थी कि कोई अकीदे के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है तुम मेरी कौम हो, बड़े प्यार से भी बात की है, लेकिन जहां पे दीन की बात आ जाती है वहां पे ये नहीं कि अच्छा तुमने अब कह दिया हाँ नहीं, तुम्हारे माबूदों को तो मैं नहीं कह सकता ऐसे, अब अगर मैं कहूंगा तो फिर देखो ना मेरी तबलीग को कौन सुनेगा। तुम मतलब आहिस्ता आहिस्ता ठीक है इनको भी कहूंगा कि तुम भी अच्छे ही हो, ये तराका का मतलब दूसरे को बीमार कर देना भी होता है, तो इन्होंने तुझे बीमार कर दिया हमारे इलाहों ने, ये भी कह रहे हैं, या उन्होंने तेरे साथ इरादा कर दिया बुराई का। लेकिन पैगंबर नहीं डरे, ये जुर्रत कैसे आती है कभी आपने सोचा? ये जरूरत पता है ईमान की वजह से आती है। जब इंसान का ईमान मजबूत होता है ना तो बेखौफ हो जाता है, उसके अंदर जरूरत आ जाती है। हम क्यों इतना मिनमिनाने लगते हैं अगर हमें कोई ऐसा बात कह दे कि अब तो देखना तेरे साथ होता क्या है, तो हम वहीं पे परेशान हो जाएंगे, कांपने लगेंगे, आया नहीं, इसको कुछ दे दो। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बात बताई थी, किसी ने कहा कि ऐसे हम गुजर रहे थे तो हमने उसको कहा कि नहीं इस तरह से नहीं कहो, कोई मांगने वाला आया उसने कहा कि ये जो जो भी दरबार वाले हैं ये आपको ऐसे करेंगे, ये आपको ये देंगे तो आप मुझे दें इनके नाम पे, तो उसने कहा नहीं ऐसे ना कहो, ये नहीं कुछ दे सकते अल्लाह ये दिन। उसने कहा अगर तुम इस तरह से कहोगी तो देखना तेरे बच्चों के साथ ये हो जाएगा। कहती मैं तो इतना डर गई, मैंने जल्दी से पैसे पर्स से निकाले उसको दिए। क्यों डर गए हम? क्या हमें यकीन नहीं है कि जिस चीज पे हम ईमान रखते हैं वही हक है, वही सच है, और ये सब झूठ है, इफ्तरा है? क्या हमारा ये ईमान नहीं है? अगर ये ईमान है तो हम डरते क्यों हैं? ईमान तो जुर्रत देता है। झूठे अकीदे और झूठी बातों के खिलाफ सीना तान के खड़ा करने वाला बना देता है ईमान, और जहां ईमान में कमजोरी हो वहां इंसान लड़खड़ाता है, वहां इंसान को फिर परेशानी होने लगती है कि हमारा कुछ बिगाड़ देंगे, हमारे बिजनेस का कुछ मसला हो जाएगा, ये हमारे फिर कस्टमर नहीं बन के रहेंगे, ये हमसे नाराज हो जाएंगे, मेरी दुकान पे नहीं आएंगे, मुझे एक्सट्रीमिस्ट समझेंगे, आए फिर मेरा क्या होगा, फिर ये मुझे लाइक नहीं करेंगे, एक्सेप्टेबल नहीं मैं रहूंगी इस माशरे में। मेरे ऊपर ये लेबल लग जाएगा कि ये तो बहुत ही एक्सट्रीम पे, बड़ी फनेटिक है, ये है। चाहे हमारा ये हो कि हमने तबलीग ही क्यों नहीं करनी, चाहे हम ये कहते हो हमने तो तबलीग करनी ना इसलिए, बिल्कुल ना कहो, तो आपने तबलीग करनी किस बात की है? अगर आप यही जुर्रत नहीं रखते कि आप ये कह सकें कि ये सही नहीं है, दावत का काम तो बाद की बात है, तो बैकफुट पे जाके आपने दावत नहीं देनी। हम कहते नहीं, कन्फ्रंट करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आगे सामने आने की जरूरत नहीं है, इतना हम डरते हैं। और यहां वो देखें कितने बरमला कह रहे हैं, जहां बात तौहीद की आ जाती है वहां देखें कैसे जुर्रत है। कोई लगी लिपटी बात नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइजिंग बात नहीं। इन्नी उशहीदुल्लाह, मैं तो गवाह बनाता हूं अल्लाह को, और तुम भी गवाह रहो कि किस बात पे मैं बरी जिम्मा, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है तुम्हारे इस शिर्क के साथ। इससे बड़ी क्या बात हो सकती? हमने तो नहीं सोचा था मैं बाद में कैसे इनसे बात करूंगा। मिन दूनी, उसके सिवा, फकी दूनी। अब बाज ने इसको पिछले जुमले से जोड़ा है, मिन दूनी ही को बाज ने अगले जुमले से जोड़ा। पिछले जुमले से अगर जोड़ेंगे तो मैं बरी हूं, जिम्मा हूं उससे जिसे तुम शरीक ठहराते हो अल्लाह के सिवा, यानी और मैं किसी, जितने भी माबूद हैं सबसे बरी जिम्मा। और आगे के साथ जोड़ें तो मिन दूनी ही फकी दूनी जमिया, उसके सिवा जिसको भी तुमने बुलाना है बुला लो और मेरे खिलाफ चाल चलो, सब के सब मिलके अल्लाह के सिवा और जिसको भी तुम मिला सकते हो अपने साथ मिला लो, और मेरे खिलाफ करो जो करना है। अब देखें ये होती है जुर्रत, ये है वो ईमान जो मजबूती देता है। आप देखें कितनी मजबूती, ही डजंट केयर तुम्हारे वो, तुम कह रहे हो वो मुझे बुराई पहुंचाएंगे, वो मुझे ऐसा कर देंगे, मैं जुनूनी हो जाऊंगा, या मुझे ये हो जाएगा, मेरी कोई मसला हो जाएगा जिंदगी में। नहीं, तुम जो करना है करो, सुमला तुम तीनों, फिर ना मुझे मोहलत भी ना देना, मुझे टाइम भी ना देना कि मैं कुछ अपने लिए इंतजाम कर सकूं, कुछ भी नहीं, बुला लो जिसको बुलाना है। इन्नी तवक्कल तु अल्लाह रब्बी व रब्बिकुम, मैं तो तवक्कल करता हूँ अल्लाह पर जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, चाहे तुम मानो चाहे ना मानो। ये होता है भरोसा अल्लाह ताला पर कि मेरा अल्लाह है ना। ये कहना आसान होता है कि हम जब कहें कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता मगर सिर्फ अल्लाह का इज़न हो, तो अल्लाह ना चाहे तो मुझे कोई नुकसान नहीं दे सकता, और अल्लाह ताला मेरा फायदा ना करना चाहे तो कोई फायदा नहीं दे सकता। ये बातें बोलने में तो हैं, लेकिन जब इसकी बेस पे तवक्कल करना हो तो फिर आता है अंदर तवक्कल, आता है कि हाँ बस फिर मुझे क्या है, जितना मर्जी मुझे कहो मुझे डराते रहो, फलाना ऐसा कर देगा तुम्हारा, फलां ये कर देगा, वो तो फिर आपको यहाँ पे जीने नहीं देंगे, इस माशरे के अंदर रहते हुए तो आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते, ये तो वो सोसाइटी है, वो तो फिर आपके खिलाफ हो जाएंगे, वो तो ऐसे हो जाएंगे। अब इसमें तो फिर तवक्कुल कहाँ है? मैंने तवक्कुल किया अल्लाह पर जो मेरा रब है और तुम्हारा रब। मामिन दाबत इल्ला हुआ आखिर तुम बिनासिया थी। अच्छा एक आप बात देखें कि ये भी उनको बता दिया कि ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरा ही रब है, तुम्हारा तो कोई और रब होगा, मेरा तो रब अल्लाह है, वो मैं उसके, वो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। तौहीद फिर यहां पे समझा दी, और कोई जानदार ऐसा नहीं है, मगर वो पकड़े हुए उसकी पेशानी को, सुभान अल्लाह। आप देखें ये नासिया कहती हैं, ये जो आपकी माथा है ना, माथा माथा के ऊपर जो बाल है, यहां से किसी को पकड़ लेना, अब आप सोचें कि यहां से अगर किसी को पकड़ लिया हो तो वो तो पूरा इन कंट्रोल होता है पकड़ने वाले के, किसी ने किसी का बाजू पकड़ा हो तो फिर भी वो किसी कुछ कर सकता है, भाग सकता है, इधर उधर हो सकता है, मूव कर सकता है, लेकिन जिसने किसी के यहां से बाल पकड़े हो ना, वो तो मूव ही नहीं कर सकता, वो तो मुंह भी नहीं अपना हिला सकता, चेहरा भी नहीं दूसरी तरफ कर सकता, तो ये टोटल कंट्रोल की अलामत है कि बालों यानी यहां पे शानी से पकड़ा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने हर जानदार को, और उस जानदार में हम नहीं आते क्या? तो फिर अल्लाह ताला का हम पे भी मुकम्मल कंट्रोल है, काबू में किया हुआ है, कहीं छुड़ा के भाग नहीं सकते, कहीं हिल नहीं सकते। और फिर ये जगह इंसान की इज्जत की भी जगह है, तुम्हारी इज्जत भी अल्लाह के हाथ में है। तो सारी मखलूक, सारे जानदार आ गए ना इसमें, तो सारी मखलूक की है, और इस तरह जकड़ी भी है अल्लाह ताला के कब्जा है कुदरत में। और यहां पे सबसे मजबूत ग्रिफ की बात, गर्दन भी नहीं कहा गया कि गर्दन पकड़ी है। ये यहां से नासियती बियदिक आती आती है ना मसनून दुआ, अल्लाह मेरी पेशानी तेरे हाथ में है अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो यानी तुम क्या समझते हो, सारे जानदार तो अल्लाह के हाथ में, फिर इंसान क्यों डरे किसी और से? सब अल्लाह ताला के कब्जा है, कुदरत में है, उसके कंट्रोल में है, फिर मेरा कौन नुकसान पहुंचा सकता है? वो कितना ही मजबूत और ताकतवर क्यों ना हो, उसके पास कितना ही माल क्यों ना हो, उसके कितने ही फॉलोअर क्यों ना हो, तो नफा नुकसान तो फिर अल्लाह के हाथ में है ना। तो इतनी देखें जुर्रत वाली बात कह रहे हैं, इन्ना रब्बी आला सिरात मुस्तकीम, बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है, यानी सीधा रास्ता उसी का है, सीधा रास्ता उसी का है कि जो हिदायत का रास्ता है वो मेरे रब का रास्ता है, और यानी जो इस रास्ते पर चलेगा वो ही सीधे रास्ते पर होगा। और सीधे रास्ते पे होने का मतलब ये भी है कि वो जो भी करता है वो सही करता है, उसके कामों में कोई फ्लॉ नहीं है, कोई वीकनेस नहीं, कोई कजी नहीं उसके कामों के अंदर, उसके सारे काम दुरुस्त हैं, सीधे हैं, वो सीधे रास्ते पर है। समझ आई बात? तो ये वो अलल एलान कह रहे हैं लोगों को, और जो उसके रास्ते पर चलेगा वो ही सीधे रास्ते पर होगा, क्योंकि सीधा रास्ता सिर्फ उसी का है। बाज लोग ये कहने लगते हैं ना कि सबके रास्ते ही सीधे हैं, नहीं, सबके रास्ते सीधे नहीं है, हर चीज पे कंट्रोल भी उसका है और वो ही सीधा है, रास्ते पे है, जिसको चाहे फिर इसी रास्ते पे चला दे। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उसी का सिराते मुस्तकीम है, वो हमें भी सिराते मुस्तकीम की तौफीक दे, इस पे चला दे और मंजिल तक पहुंचा दे। फइन तवल्लौ, फिर अगर तुम मुंह फेरते हो, फिर भी नहीं तुम मानते, मैं इतने तुम्हें दलाइल भी देता हूं, तुम्हें कायल करने की भी कोशिश करता हूं, तुम्हें समझाता भी हूं, इन सारी बातों के बावजूद ये एक दो दिन की बात नहीं है, साल हा साल तक जो वो तबलीग करते रहे, उसके बाद वो ये कहते हैं। देखिए जब पैगंबरों की जिंदगी होती है ना, वो ऐसी होती है कि वो इतने सेल्फलेस होके काम करने वाले होते हैं ना, वो लोगों को, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी कि वालदैन की तरह, कि वो जैसे वालदैन बच्चे को कभी डांट के समझाते हैं, कभी प्यार से समझाते हैं, कभी डरा के समझाते हैं, बस उनका दिल क्या होता है कि हमारा बच्चा बस बुराई से बच जाए, उनको लालच किसी इनाम का नहीं होता, किसी चीज का नहीं, तो उनको लालच क्या है कि इसको भलाई ही भलाई मिले बस। तो अंबिया भी इसी तरह करते हैं, कहीं वो उनको डरा के बता रहे हैं, कहीं उनको कोई बशारत दे के बता, देखो तुम्हें ये अच्छी चीज मिल जाएगी, देखो तुम्हें तरक्कियां मिलेंगी, देखो तुम्हारी कुव्वत में इजाफा हो जाए, देखो तुम इस रास्ते से हट जाओ वरना इसमें ये बुराई है, ये बुराई है, ये आगे जाके तुम्हें मुसीबत में डाल देगा, खसारा पा जाओगे तुम। तो वो इस तरह से करके तरह तरह से लोगों को समझाते, हमें तुम्हें उससे कोई बदला थोड़ा ही चाहिए, तुम क्यों नहीं सुनते? तो ये अगर वालदेन के पर्सपेक्टिव से आप देख के सोच के और फिर ये बात समझेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। और फिर आप देखें कि जैसे वालदेन को अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत होती है, इसी वजह से वो शदीद ख्वाहिश रखते हैं कि ये सुधर जाएं,
शदीद और कोशिश भी करते हैं, कोशिश करते हैं कि इससे ये बच्चे को बुराई से दूर करते हैं, लिहाजा वो अपना आप घुला देते हैं, चाहे उनको कोई कहे भी कि नहीं आप इनके पीछे अपने आप को ना घुलाएं, लेकिन वो इंसान की नेचर के अंदर होता है, क्योंकि जिससे मोहब्बत ज्यादा होती है ना, इतना ही इंसान की फिर ये ख्वाहिश होती है, खैर ख्वाही होती है उसके साथ कि इसको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए वो अपने आप को खत्म कर लेती हैं बच्चों के पीछे। देखें वालदैन को, इसी तरह पैगंबर होते हैं, वो अपने आप को घुला देते हैं जबकि उनका कोई जाती मफाद नहीं होता। मगर फिर ये देख लेना कि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में होती है। इन्नक ला तहदी मन अहबबता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। ए नबी, आप तो हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहें, अल्लाह ही है जो हिदायत देने वाला। आपने तो खुद को रोग लगा लिया, इतना दुख आप ले लेके कि ये क्यों नहीं ईमान लाते, क्यों नहीं समझ जाते। तो जो जिसको हमदर्दी जितनी ज्यादा होती है ना, उसको दुख भी उतना ज्यादा होता है। तो वे कहते हैं कि अगर फिर भी तुम मुंह फेरते हो तो मैंने तो तुम्हें पहुंचा दिया, फकत अबलगतुकुम मा उर्सिल तो भी लाइक, जो मैं दे के भेजाऊंगा मैंने तो तुम्हें पहुंचा दिया, तुम फिर भी अगर नहीं मानते तो। पैगाम रसूल का नहीं होता, पैगाम अल्लाह का होता है जो रसूल के जरिए लोगों तक जाता है। वयस्तखलिफु रब्बी कौमन गैरकुम, पीछे लगा देगा मेरा रब एक कौम को तुम्हारे अलावा। अगर तुम फिर भी नहीं मानते ना, तो फिर अल्लाह ताला देखिए अब एक डरावे का अंदाज है कि अगर तुम नहीं मानोगे ना, अल्लाह किसी और को ले आएगा। अल्लाह ताला के पास तो कमी नहीं है, उसको परवाह नहीं है कि ये तो इतनी तरक्की याफ्ता कौम है, इसको मैंने खत्म कर दिया, ये तबाह हो गई तो फिर दुनिया की तरक्की कैसे होगी, फिर जमीन कैसे चलेगी, फिर ये वाली चीजें तो और लोगों को नहीं आएंगी। आप देख लें आज तक वो अहरामे मिस्र खड़े में वैसी दुनिया में इमारतें नहीं कोई बना सका, हजारों साल गुजर गए वैसे के वैसे ही। क्या उनकी टेक्नोलॉजी थी, क्या उनके उलूम थे, किसी को नहीं पता। इतनी इतनी बड़ी तरक्कियों वाली कौमें गुजरी, अल्लाह ताला ने उनको मिटाते हुए ये नहीं सोचा कि भाई फिर उसके बाद कैसे लोगों को यही चीजें समझ आएंगी, लोग कैसे समझेंगे, लोग कैसे जानेंगे, ये रहेंगे बाकी तो लोगों को सिखाएंगे, यही खत्म हो गए तो लोग कैसे सीखे। कुछ नहीं, वो मुतासिर नहीं होता किसी की तरक्की से, उसको परवाह नहीं है, तो वो कोई और ले आएगा। कोई भी अगर ये सोचता है ना, ये सिर्फ एक इनकी बात नहीं है कौम आद की, कोई कौम या कोई फर्द भी अगर ये सोचता है ना कि मेरे बगैर तो कोई गुजारा चल ही नहीं सकता, मैं ही हूं तो ये दीन की गाड़ी चल रही है, मैं नहीं बताऊंगी तो पता नहीं क्या दीन को ही अल्लाह माफ करे कोई नुकसान हो जाना या खत्म ही हो जाएगा, अल्लाह ना करे, ऐसा तो नहीं होगा। अल्लाह का दीन है, अल्लाह ताला ने अपने दीन को चलाना है और सदियों से चल ही रहा है, हक वाले आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो दीन थोड़ी खत्म हो जाता है किसी के पीछे। लोगों को ये जोम हो जाता है कि पता नहीं हम ही काम कर रहे हैं ना तो बस काम हो रहा है। नहीं, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, यही वो उनको समझा रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे, तुम नहीं समझोगे, तुम इसी तरह मुंह फेरे रहोगे तो कोई और अल्लाह ले आएगा कौन। अगर आज अरब नहीं समझते तो अल्लाह ताला कोई और लोगों को उठा देगा। देखिए आज वेस्ट में कितना काम हो रहा है, तो इतने अल्लाह ताला किसी कौम का मोहताज नहीं, उसका दीन किसी लोगों का मोहताज नहीं है कि वो ही काम करें तो तब दीन की गाड़ी आगे चले। एक नहीं करेगा दूसरा आ जाएगा और बहुत से आ जाएंगे। वला तदुर्रूनहू शैआ, और वो अगर तुम्हें मिटा के दूसरों को भी ले आता है ना, तो तुम उसका कोई नुकसान नहीं कर सकते, कुछ उसको जरर नहीं पहुंचा सकते, कोई उसके मामले में कोई ये नहीं कह सकता कि क्यों तूने मेरे साथ ये किया। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज, बेशक मेरा रब हर चीज की निगरानी करने वाला, हर चीज उसके कंट्रोल में, उसकी नजर में, कौन क्या कर रहा है, अमल की भी निगरानी, इंसानों की भी निगरानी, उनकी हर हर नजर तक की निगरानी अल्लाह कर रहा है, दिल की बातों पे भी वो निगरान है, वो जानता है, उनकी भी मुहाफजत, उनकी पर भी उसकी नजर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला का के नामों में से उसका एक नाम अल हफीज है, और वाकई उसकी हिफाजत ना हो और उसकी निगरानी ना हो तो इंसान तो शायद जमीन पे चल फिर भी ना सके। तो अल्लाह ताला की हिफाजत ही होती है कि इंसान आज सरवाइव कर रहा है अपने गुनाहों के बावजूद, और जिन्नात और शयातीन और ऐसी बलाओं से भी अल्लाह की हिफाजत ही होती है कि इंसान चल फिर रहे हैं, वरना अल्लाह की हिफाजत ना हो तो ये चीजें चीर फाड़ दें, क्योंकि इन बड़ी कुव्वत वाली होती हैं, इंसान इनके मुकाबले में कुछ ज्यादा कुव्वत नहीं रखता। तो अल्लाह कुल्ली शयइन हफीज है अल्लाह ताला। देखिए आप इस कलमे को, अल्लाह कुल्ली शयइन कदीर तो आपने पढ़ा था, अल्लाह कुल्ली शयइन हफीज भी आज पढ़ ले। हर चीज की निगरानी करने वाला, हर चीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं सोचा कभी आपने? हर बात, हर अमल, हर ख्याल, हर सोच, हर जर्रा, सहरा में पड़ा हुआ एक जर्रा, पानी का एक कतरा, हर हर मछली, हर हर चींटी, हर हर वायरस, हर हर बीमारी, हर चीज उस पे अल्लाह की निगरानी है, उसकी नजर में है और उसके कंट्रोल में है। निगरानी ये होती है, कहते हैं ना निगरानी कर रहे हैं वो, उनकी निगरानी में मैंने दे दिया। तो ये है निगरानी की, हर चीज उसकी निगरानी में। सुभान अल्लाह, अगर आप इस एक बात के ऊपर गौर करने लगे ना, इन्ना रब्बी आला कुल्ली शैइन हफीज, एक जहान है सोच का कि जहां तक आप सोचेंगे अल्लाह की निगरानी निगरानी नजर आएगी आप। अल्लाह अकबर। वलम्मा जाअ अमरुना, और अब जब आ गया फैसला हमारा, नज्जैना हूदन, निजात दी हमने हूद अलैहि सलाम को, वल्लदीना आमनु माहु, और वो लोग जो ईमान लाए उसके साथ उनको भी निजात दी, बी रहमतिन मिन्ना, साथ अपनी रहमत की, अपनी तरफ से अल्लाह ताला की एक रहमत थी कि अल्लाह ताला ने उनको निजात अता फरमा दी। अल्लाह का फैसला आ गया, हूद अलैहि सलाम समझाते रहे मगर जब वो कौम नहीं मानी, तो जब कौमों के पास रसूल आते हैं ना तो कौमें अगर ना माने तो फिर वो सफाए हस्ती से मिटा दी जाती हैं। तो बचे कौन? हूद अलैहि सलाम और ईमान वाले। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाई जा रही मुशरिकीन मक्का को कि तुम समझ लो वो आद कौम जिसके किस्से तुम आज तक सुनते हो, जो इतनी पावरफुल कौम थी, देखो उनके साथ क्या हुआ और वहां पे निजात किसको मिली। तो ये अहले ईमान कोई छोटी बात नहीं है, अल्लाह ताला की नुसरत इनके साथ होती है, उसकी रहमत इनके साथ होती है, क्योंकि वो तो उनको कुछ समझते ही नहीं थे ना। वनजैना हुम मिन आधा बिन गलीज, और हमने निजात दी उनको, गलीज वैसे हम उर्दू में गलीज कहते हैं गंदी चीज को इस तरह, लेकिन अरबिक में गिलजा कहते हैं सख्ती को, शिद्दत को, सख्त अजाब से, शिद्दत वाले अजाब से निजात दी। और वो सख्त अजाब क्या था, जैसे कि आपको पहले पता ही है कि 8 दिन और 7 रातें इस कतर शदीद आंधी चली, ऐसी हवाएं चली कि उनको पटक पटक के नीचे करने लगी। एक वीडियो किसी ने भेजी हुई थी इस पे व्हाट्सएप पे कि इस तरह की हवा चल रही थी कि लोग जो है ना कोई पोल से लिपटा हुआ है, कोई गाड़ियों को पकड़े हुए है, कोई कुछ चीजों, लेकिन ना चीजें थम रही हैं, लोग ऐसे हो रहे हैं कि उनके कदम उखड़ जाएंगे, उनके कपड़े उड़ रहे हैं, उनकी चीजें हवा के अंदर इतनी उड़ रही है कि ऐसे लग रहा था कोई चीज ही आके किसी के सर पे गिर जाएगी, ये मर जाएगा। लेकिन अभी ये इतनी हवा नहीं थी जितनी आद पे चली। आद की हवा पता है कितनी थी? आद की हवा इतनी थी कि वो खजूरों के बराबर टॉल थे, खजूरों के दरख्त होते हैं ना कितने टॉल होते हैं,
उनके बराबर टॉल थे और उनको जमीन से उठाती थी हवा, ऊपर लेके जाती थी और फिर गिराती थी, और सरों के बल गिरते थे वो आगे। उस तरह हर एक तबाह हो गया, और फिर वो हवा ऐसी नहीं थी सिर्फ बाहरी थी, उनके घरों के अंदर घुस घुस के उनको मारा। अल्लाह के लश्कर है ना, अल्लाह के लश्करों को लाई जानता है, ये अल्लाह तला के मामूली छोटे छोटे लश्कर हैं, कुछ ज्यादा नहीं। और अल्लाह ने एक जगह पे आता है इब्ने कसीर में कि अल्लाह तला ने अपने हवा के खजानों में से सिर्फ इतनी हवा छोड़ी थी जितना बैल का नथना होता है, सिर्फ इतनी हवा। उसके हवा के खजाने कितने इमेजिन कर सकते हैं, सिर्फ इतनी सी हवा का अपने खजानों में से छोड़ी। और आज अगर थोड़ी तेज हवा चल जाए ना, सारी रात नींद नहीं आती, चीजों बाहर से आवाजें आ रही होती हैं दरख्तों की या चीजों के उड़ने की, तो घबराहट रहती है। और कहाँ वो हवा जो इतनी तेज हो के पता नहीं घरों को उड़ा दिया हुआ, चीजों को उड़ा दिया हुआ, इंसान उड़ रहे हैं हवाओं के अंदर, तो कितनी खौफनाक एक तस्वीर भी है अगर इंसान सोचे कि इंसान हवा में उड़ उड़ के गिर रहे हैं नीचे। बाकी चीजों का हाल क्या होगा।